ओम शांति, ओम ओम शांति। सभी प्यार से मिलकर कहेंगे तीन बार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबने बहुत सुंदर गीत सुना, अभी सबको पसंद आया गीत, उसकी जो ट्यूनिंग थी, उसके जो शब्द थे, मन को क्या कर रहे थे, सूदिंग थे ना बहुत। उस गीत में राजयोग की पूरी महिमा दी गई थी कि राजयोग से क्या क्या हो सकता है। और आप सब किस लिए पधारे हैं, वो राजयोग सीखने के लिए पधारे हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो इतना सुंदर श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम राजयोग सीखें, और उस संकल्प को साकार करते हुए यहाँ सब आकर पहुंच गए, तो यहाँ आने की आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और आपका इस घर में बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। अपनी ओर से भी, संस्था की तरफ से भी, क्योंकि इस समय हमारे कैंपस अलग अलग हैं, तो हमारे सीनियर्स अलग अलग जगह पर हैं, और दादियां भी, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है, एक दादी हमारी लंदन में है इस समय जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, फिर नेक्स्ट जो है वो गुलजार दादी, वो इस समय बॉम्बे में है जहाँ से आप आए हैं, और रतन मोहिनी दादी नीचे जो कैंपस है वहाँ पे भी तीन प्रोग्राम इकट्ठे, चार प्रोग्राम इकट्ठे, उनका इनॉग्रेशन है। एक जैसे आप लोग राजयोग शिविर में आए हैं ना, वैसे 6000 भाई बहने भारत के अलग अलग प्रांतों से इकट्ठे हुए हैं राजयोग शिविर के लिए। दूसरा ग्रुप है जो हमारे सेवा केंद्रों में भाई लोग समर्पित रूप से रहते, उनकी भट्टी का प्रोग्राम है। तीसरा है जो बहने इस ज्ञान में चल पड़ी है और चाहती है कि हम भी समर्पित होकर इस विद्यालय में राज्यों का टीचर बनकर अपनी सेवाएं प्रदान करें, उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और चौथा कौन सा कहा, वही तीन, नहीं वो तो हो गया, वो पूरा हो गया, और ये चौथा प्रोग्राम यहाँ पे और पांचवा प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में चल रहा है। तो चूंकि शांतिवन कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़े प्रोग्राम है, तो दादी वहां पर है, जरूर आपसे मिलने आएगी, लेकिन आज उनकी तरफ से, सबकी तरफ से, पांडव भवन के में रहने वाले सभी भाई बहनों की तरफ से आपका पुनः पुनः इस धरा पर अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है, सत्कार है। आप जब यहाँ आए हैं आपको कैसा लग रहा है, अच्छा मना उस दृष्टि से नहीं पूछ रही हूँ मैं, आपको यहाँ लगता है कि हम अपने घर में आए हैं या ऐसा लगता है कहीं अजनबी क्या पहुंचे हैं? अपने घर में, और अपने घर में कौन आते हैं, अपने घर में अपने बच्चे आते हैं, है ना? तो आप किसके बच्चे हो, परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। दुनिया की पोजीशन के हिसाब से आप बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन भगवान के सामने हम सब उसके बच्चे हैं, और चूंकि हम सब बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं, और भाई बहन में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, नहीं? तो हम सब एक जैसे परिवार में बैठे हैं, पिता परमात्मा के घर में, तो हम छोटों का भी प्यार आपके लिए उतना ही है, इसलिए पुनः पुनः आपका अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। तो जैसे कहा, ये राजयोग का जो कैंप है, आपके बैच में भी इसका एम लिखा हुआ है, क्या है, सारा दिन लगा के रखा है ना, बताओ तो सही क्या एम है, हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। तो हमें क्या चाहिए हमारे जीवन में? खुशियां चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, और उसके लिए हम यहाँ क्या करने आए हैं? राजयोग सीखने आए हैं। तो अवश्य ही राजयोग में वो ताकत है कि जिसका अभ्यास करने से हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। तो वो राजयोग क्या है, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग। इन चार पांच दिनों में इस राजयोग के दौरान हम आखिर सीखेंगे क्या, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ लूं, आप सभी को अकोमोडेशन अच्छा मिला? हाँ, प्रॉपर है, खुश है उसमें कि कोई थोड़ी बहुत कंप्लेन है? पांडव भवन में मिला तो कंप्लेन नहीं है, कंप्लीट है। और जो यहाँ पर भोजन मिल रहा है अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है ना। और फिर भी आपको अगर लगे ना कि हमारी तबीयत के अनुसार कुछ भोजन में थोड़ा सा हल्का मतलब थोड़ा बहुत कुछ अंतर चाहिए, तो आपके जो इतने सारे गाइड भाई बहने हैं ना, इनमें से आप किसी को बता सकते हैं और आपकी हेल्थ के अनुसार जो माकूल हो वो आपको प्राप्त भी करा सकेंगे। बहुत अर्जेंट लगता हो कि नहीं, मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण ये नीड मेरी है, इसको पूरा करना ही है, बाकी एडजस्ट कर सकते हैं तो जरूरत नहीं। भगवान का घर का ब्रह्मा भोजन कार्य है, तो ब्रह्मा भोजन माना ही, भगवान के घर का ब्रह्मा भोजन माना जिसमें परमात्मा की पवित्र वाइब्रेशन है। और हम सब जानते हैं पवित्र वाइब्रेशन अपने आप में एक हीलिंग एनर्जी होती है, तो जिस फूड में वो पवित्र वाइब्रेशन हो तो वो फूड अपने आप आपको हील करेगा, है ना। तो इतने अच्छे वातावरण में बॉम्बे का वातावरण और यहाँ का वातावरण कितना अंतर, बहुत, कितना। बच्चे से पूछते ना, पापा को प्यार करते कितना? बहुत, माना कितना? जमीन से आसमान तक। क्यों इतना अंतर? जबकि आप सुबह से यहाँ पहुंचे हैं, आपने देखा होगा कि उस दुनिया में भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस सारी एक्टिविटीज यहाँ हो रही है। यहाँ अपनत्व मिल रहा है, नहीं कोई बिना बात किए भी वाइब्रेशन है। यहाँ से वाइब्रेशन कौन सा? चारों ओर रेडिएट हो रहा है, क्योंकि हमारी सोच वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन बनाता है वायुमंडल को, वातावरण को, और उस वातावरण में जो आएगा जिस प्रकार के वाइब्रेशन उसको वैसी फीलिंग आएगी। एक अगरबत्ती जलाती हूँ मैं जिसमें गुलाब की एसेंस है, तो वो जलाते ही गुलाब की खुशबू सबको महसूस होगी, लेकिन एक अगरबत्ती है जिसमें मोगरे का एसेंस है वो जलाते ही, लेकिन एक कई बहुत बदबू है, कुछ गंदा कचरा उसमें बदबू निकल रही है, तो क्या हुआ? वो वाइब्रेशन फैल रहे ना। तो यहाँ आके क्या फील हो रहा है? अनोखी शांति। इस कैंपस में जैसे ही एंटर करते हैं महसूस होता है कुछ अलग ही दुनिया है, ये एक अलग प्रकार की शांति। भल आवाज है, आवाज होने के बावजूद भी उस आवाज में एक शांतता का एहसास है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन सोच। तो कौन सी सोच यहाँ रहने वाले लोग कर रहे हैं? वो सोच कर रहे हैं जो राजयोग से हमें सिखाया गया है, और वही राजयोग आप सब यहाँ सीखने आए हैं। तो चूंकि आप भी यही सीखने आए हैं, इसका मतलब ये सीखकर आप भी, आप जहाँ रहते हैं वहां का वातावरण डिट्टो ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं राजयोग क्या है। राजयोग ये दो शब्द है, राज प्लस योग, और योग माना कनेक्शन, जोड़, संबंध, है ना। तो हमारा किस किस के साथ कनेक्शन होता रहता है, और हमारा माना मतलब किसका, आत्मा का, किस किस के साथ कनेक्शन होता रहता है। ये मन चुपचाप तो नहीं बैठता है ना, बैठता है चुपचाप। कहते ना दुनिया में भी इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी जो बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, वो भी कुछ समय के लिए स्टॉप करनी पड़ती है, लेकिन ये मशीन नॉन स्टॉप चलती रहती है। तो ये जो नॉन स्टॉप चलती है, किस किस को कनेक्ट होती रहती है, ये किस किस को कनेक्ट होती रहती है, किस किस के साथ इसका योग लग जाता है, किस किस के साथ लगता है, बोलो। सबके साथ, एक तो अपने साथ ही होता है उसका। हम अपने आप से बात करते रहते हैं, मेरे को उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, अपने साथ ही कनेक्ट होते रहते हैं। और अपने आप से कनेक्ट करते समय सोच की जो क्वालिटी थी, उसके आधार से मैंने फीलिंग की, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा नहीं किया, वो किया, तो फीलिंग अच्छी नहीं। अरे हम वहां गए, इतना अच्छा लगा, सबने इतना अपनापन दिया, बस सोच रहे, अपने आप से बात कर रहे, फीलिंग कितनी अच्छी है ना। तो हम एक तो अपने आप से कनेक्ट होते रहते हैं, माना मन अपने पास में है ना, अभी दूर नहीं जा रहे, बहुत क्लोज को देख रहे हैं। नेक्स्ट कौन है क्लोज इसके, नेक्स्ट कौन है क्लोज इसके, अपने वाले, सोचो नेक्स्ट कौन है क्लोज इसके, शरीर है ना। तो ये जो फीलिंग है, ये जो सोच चल रही है, ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो सबसे पहले किधर जा रही है, तो हमारा योग किसके साथ, बॉडी के साथ। फीलिंग अच्छी होगी, यहाँ अच्छी एनर्जी जाएगी, तंदुरुस्ती आएगी। फीलिंग अच्छी नहीं होगी, यहाँ अच्छी एनर्जी नहीं जाएगी, तंदुरुस्ती। तो आज जो शिकायत है, टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, डर है, ये नहीं चाहिए ना, इसीलिए तो आए हैं जॉयफुल लाइफ। तो पहला ही सोल्यूशन कहाँ मिल गया, सोच अच्छी क्रिएट करो, सोच को अच्छा बनाओ, फीलिंग अच्छी आएगी, और फीलिंग अच्छी तो उमंग होगा ना, खुशी होगी ना। तो सबसे पहला मन को अगर अच्छा बनाना है, मन को खुशियां चाहिए, मन में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, अच्छी सोच। दूसरा क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए ना, ये भी तो बहुत परेशान करता है ना, आज यहाँ दुख रहा है, आज वहां दुख रहा है, आज सिर में दर्द है, आज घुटने चल नहीं पा रही हूं, नहीं। तो ये एनर्जी यहाँ पर किस प्रकार की जा रही है, वो डिसाइड करेगी कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। तो अगर आज तकलीफ है, तो जो इसको एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो हमारा योग शरीर के साथ भी। तीसरा, हमारा योग किसके साथ, सब कहा, जो लोग हैं जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो संबंध में होते हैं, और कुछ लोग हैं जो संपर्क में होते हैं। तो मन का सुख हो गया पहला, फिर तन का, फिर ये जन का, जन माना लोग, और कुछ लोग संबंधी, कुछ लोग संपर्क। तो अब ये हम जिनके लिए सोच रहे, ये थॉट हमारी वाइब्रेशन उनके पास भी जा रही है, और जैसी वाली जाएगी रिटर्न में, अब हम सोच ले हम कैसी वाली भेजते हैं, कैसी वाली हम भेजते हैं। तो अटेंशन कहाँ, अपने ऊपर, हमको अगर प्यार चाहिए तो प्यार पहले वहां से नहीं चाहिए। कल हम पॉलिटिशियन विंग के प्रोग्राम में गए थे, हमारे बड़े भाई साहब ब्रिजमोहन भाई जी एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे। उनके परिचय में बताया गया कि वो अकाउंटेंसी की हुई थी, उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट थे, लेकिन बाबा के कार्य में जुड़ गए, वो सब छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने अकाउंटेंसी में, चार्टेड अकाउंटेंट जब बन रहे थे तो हमको सिखाया गया जो बाहर जा रहा है तो लॉस है, जो आ रहा है वो प्रॉफिट है। और बोले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आया तो इक्वेशन टोटल रिवर्स हो गई, यहाँ सिखाया गया जो जा रहा है तो प्रॉफिट है, आ रहा है तो है ना, यहाँ से जो जाएगा वही मेरे पास आएगा ना, इसलिए प्रॉफिट है ना, इसलिए देना शुरू करें हम। और बहुत अच्छी बात बता रहे थे वो, दुनिया में जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं ना, वहां का प्रकृति का एक एक तत्व अपने लिए नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है। इवन ये सोफा जिस पर मैं बैठी हूं, सोफा मुझे बैठने का सुख दे रहा है, वो अपने लिए क्या कर रहा है, उसको चाहिए क्या सुख? ये माइक अपने लिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बल्कि मेरी आवाज को बढ़ाकर सब तक पहुंचाने का सुख दे रहा है। पेड़ फल देते हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? नदी पानी दे रही है, अपने लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो प्रकृति का एक एक तत्व दाता बनकर दे रहा है, और परमात्मा की तो महिमा ही है कि वो दाता है, बचा कौन फिर? हम मनुष्य। तो जब प्रकृति का एक एक तत्व दाता है और वो प्रकृति का एक एक तत्व थोड़ा थोड़ा उधार लेके ही तो शरीर बना, तो उस प्रकृति जिसमें ये गुण है देने का, उसके अंदर बैठी आत्मा को क्या करना चाहिए? फिर देना चाहिए। बस ये इक्वेशन बदल देंगे ना, जीवन में खुशियां आ जाएगी, जीवन हैप्पीनेस से भर जाएगी, जीवन जॉयफुल हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कनेक्शन की, तो हमारा योग किसके साथ? संपर्क समंजन के साथ। और किसके साथ योग? प्रकृति के तत्वों के साथ। ये भी तो प्रकृति के तत्वों से ही बना है, तो जब इस लिमिटेड प्रकृति के साथ कनेक्शन है तो ये वाली वाइब्रेशन भी तो, ये बेहद की अनलिमिटेड जो प्रकृति, जो दूर दूर तक कहीं उसका अंत नहीं दिखाई पड़ता है, नजरें फैलाते जाओ कहीं उसका छोर नहीं है, चलते जाओ लगता है कि वहां पे खत्म हो रहा है, आगे बढ़ते कहीं खत्म नहीं हो रहा है। तो इतनी अनलिमिटेड जो प्रकृति है वहां पे भी तो मेरे वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो ये चार योग है, लेकिन एक पांचवा भी योग है, वो है भगवान के साथ। तो जब आत्मा का योग उस परमात्मा के साथ होता है, उसको कहते हैं राजयोग। और परमात्मा की क्या महिमा है बोलो तो जरा, बोलो बोलो, थोड़ी सी महिमा करो, ज्ञान का सागर है। थोड़ा सा एक अटेंशन रखेंगे, जो इस ज्ञान में चलते हैं वो जवाब नहीं देंगे, है ना, जो नए फ्रेश आए हैं ना सीखने के लिए, नए सिरे से जिनको सीखना है, उनको थोड़ा सोचने की समझने की, हाँ हाँ, क्योंकि उनको मार्जिन दे, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं ना, तो जो अभी फ्रेश सीखने आए हैं उनको मार्जिन दे। तो बोलो परमात्मा की महिमा करो, कल्याणकारी, और बोलो ज्ञान का सागर, पतित पावन, और दुख हरता सुख करता, और बोलो। सारी आवाज भाइयों की तरफ से, बहनों को नहीं पता है क्या? नहीं, पीछे बहन, सारी बहनें ज्ञान योग वाली है, हमने बहनों को नहीं चुप कराया, हमने उनको चुप कराया जो ऑलरेडी इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, हमने बहनों और भाइयों को नहीं चुप कराया। हाँ, बहनों की तरफ से आवाज, ये ज्ञान वाली बातें बोल रहे हैं, नए लोग आंसर देंगे। जो है जैसे है वो हमें उस रूप में स्वीकार करते हैं, हमें माफ करते हैं। बहुत अच्छी बात। और हमें तारते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाते हैं। और उद्धार करते हैं। और He's always smiling on us. Good. अभी इतनी सारी जो बातें आई ना, इसमें से जितनी भी बातें आई वो सब की सब पॉजिटिव थी। किसी ने भी एक नेगेटिव बात नहीं बोली। इसका मतलब क्या है? परमात्मा सिर्फ और सिर्फ सद्गुणों का भंडार है। और ऐसे परमात्मा के साथ जब मेरा कनेक्शन होगा तो क्या होगा बोलो? क्योंकि कनेक्शन, देयर इज पावर ऑफ कनेक्शन। व्हाट इज द पावर ऑफ कनेक्शन? पावर ऑफ कनेक्शन क्या है? इधर चीनी है, इधर दूध है, चीनी को दूध में डाला, कनेक्ट हो गए। क्या हो गया? इसमें चीनी का असर आ गया। अब रिवर्स, इधर चीनी, इधर दूध को इसमें डाला, इसमें दूध का गुण आ गया। दिस इज पावर ऑफ कनेक्शन। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे अपने गुण से। अब वो परमात्मा जो है ही पॉजिटिविटी का भंडार, जो है ही सद्गुणों का सिंधु सागर, उससे जब मैं आत्मा कनेक्ट हो जाऊंगी क्या होगा बोलो? आज रेडियो में भी जिस स्टेशन से जो प्रोग्राम आ रहा है, मैं सिर्फ ट्यूनिंग के माध्यम से उससे कनेक्ट हो जाती हूँ। अगर अच्छे गाने आ रहे हैं, मेरा मूड खराब भी क्यों नहीं हो, मैं वो अच्छा गाना सुनकर गुनगुनाकर मेरा मूड वो कैसे अप हो जाता है। अरे ये इसका तो मूड अप था, ये गुनगुना रहा है, इतना अच्छा मूड, अभी गाना अच्छा सुन लिया ना, कनेक्ट हो गए। दिस इज द पावर ऑफ कनेक्शन। और अच्छा खासा मूड हो और रेडियो में कोई रुलाई कराने वाला गीत आ रहा हो, आप रोना शुरू कर देंगे। दिस इज पावर ऑफ कनेक्शन। तो यहां पे जिनके साथ कनेक्शन हो रहा है ना, वहां दोनों बातें हैं, कभी अच्छा भी कभी नहीं अच्छा भी। लेकिन अभी अभी आप सबने परमात्मा की महिमा में सारा का सारा अच्छा बोला है ना? तो जब उससे कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? चाहे कैसी भी स्थिति क्यों नहीं हो मेरी, कैसी भी स्थिति क्यों नहीं हो, मेरी स्थिति सदा क्या हो जाएगी? अप एंड अप एंड अप एंड अप होती जाएंगी। तो लाइफ क्या हो जाएगी? फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय। और जब मेरी लाइफ वैसी होगी तो मेरे वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे? तो मेरे चारों तरफ उस फील्ड में जो भी आएगा, जैसे आप इस फील्ड में आए हो, इस कैंपस में आए हो, आते ही अभी कुछ ज्ञान नहीं सुना, कुछ किया नहीं, एक अजीब मन को एक सुकून मिल रहा है, एक राहत मिल रही है ना? ये सच है ना? तो जब हम भी ऐसा वाइब्रेशन अपनी सोच के माध्यम से क्रिएट करेंगे तो जो भी हमारे नजदीक आएगा कैसा लगेगा उनको? कैसा लगेगा, है ना? तो इसी को कहते हैं स्वयं में बदलाव लाकर संसार में बदलाव लाना। When we change, the world change. लेकिन आज तक हम क्या कर रहे हैं? मेरे अंदर गुस्सा आ गया है, मेरे जीवन में चिंता है, इसके लिए आप बदलो पहले। सारा दिन यही कोशिश चल रही है ना? लेकिन तब का मैकेनिज्म को पहले समझ लेना पड़ेगा। बस यही एक गलती हुई है, हम कार खरीदते हैं तो उसके साथ एक वो मेनू आ जाता है इसको कैसे चलाना है, एक मिक्सी खरीदते हैं तो मेनू मिल जाता है, वो कैटलॉग मिल जाता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट मिल जाती है कि इसको कैसे चलाना है अगर इससे बहुत अच्छा काम लेना चाहते हैं, इसको चलाना है तो वो इंस्ट्रक्शन की लिस्ट मिली नहीं। इवन आपके हाथ में जो ये दिया गया है ना टाइम टेबल, उसमें भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि इस राजयोग कैंप का अच्छे से अच्छे लाभ उठाने के लिए ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए वो इंस्ट्रक्शन सारे हम भूल चुके हैं, मिले तो थे भूल चुके हैं। और अब यहाँ पर बैठकर हम क्या करेंगे, उन भूली हुई बातों को फिर से याद करेंगे, और जब याददाश्त में तरोताजा हो जाएंगे तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इजी हो जाएगा, और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे रिजल्ट आएंगे हमारी लाइफ खुशनुमा बन जाएगी। इसीलिए आए हैं ना हम सभी, तो ये है राजयोग कि इसको आदत है कनेक्ट होने की। तभी कहा दो बातें हैं, क्या है, एक है इंसान संग किए बिना रह नहीं सकता, ये एक फैक्ट है, और दूसरा फैक्ट क्या है, संग का रंग लगे बिना नहीं रह सकता। तो जब संग में रहना ही है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो हम कौन सा संग करें, अच्छा वाला करें। इसीलिए कहा गया जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। लेकिन छोटी सी गलती हमने क्या कर ली है, सत्संग हमने सोचा था जहां कथा हो रही है, जहां पाठ हो रहा है, वहां जहां पूजा हो रही है, वहां सिर्फ बैठ जाना और मन को वहां नहीं बिठाना, शरीर को बिठा देना। और हमने बोला हम क्या करके आ गए, सत्संग करके आ गए। बस इस छोटा सा करेक्शन कर लेंगे ना, सत्संग तो सत्य कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते, और उसके साथ जब संग हो जाएगा ना तो रंग लगे बिना रहेगा नहीं। तो उसका रंग तो बहुत अच्छा है ना, कितनी अच्छी, तो आपने उसकी क्वालिटी सुना दी, कोई भी एक रॉन्ग नहीं थी, निगेटिव नहीं थी, तो कितना अच्छा रंग लगेगा हमारे ऊपर। तो ये सत्संग करने आए हैं हम, तो ये राजयोग में कोई नई बातें नहीं होंगी, हमें सभी बातें पता है जो राजयोग में आप सीखेंगे। लेकिन जो सभी बातें हैं ना हम जानते हैं, वो सब परस्पर विरोधी बातें हैं, और उन परस्पर विरोधी बातों को ले लेके हम जीवन में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने प्रति दो मान्यताएं हैं, मेरे स्वयं के प्रति मेरी दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता, मिरर के सामने खड़ी होती हूं, जो प्रतिबिंब वहां बनता है ये मैं, लेकिन इसमें कुछ दर्द हुआ, आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है, इसको मैं भी बोला, इसको मेरा भी बोला, मैं और मेरा अलग होता है, बस इसको ठीक करना पड़ेगा अभी। ऐसे ही परमात्मा के लिए भी परस्पर विरोधी बातें हैं। एक तो कहेंगे कि उस परमात्मा ने, क्योंकि आज न्यूज़पेपर उठाते हैं और क्या होता है, क्या समाचार पढ़ते हैं, और पढ़ते ही कहते हैं अरे रे कलयुग भी नहीं, ये तो घोर कलयुग चल रहा है, और फिर कहते हाँ भगवान का वायदा है अति धर्म ग्लानि के समय वो आएगा। अब वो आएगा माना कहीं रहता है, और आएगा भी नहीं बोलते, अवतरित, और अवतरित का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, माना हमने क्या कहा वो ऊपर रहता है, कोई भी काम अगर नहीं बनता तो क्या कहते ऊपर वाला जाने, लेकिन फिर कहते वो तो कण कण में व्यापक है, वो तो तुझ में मुझ में सब में है, तो नीचे वाला भी बोल दिया ऊपर वाला भी बोल दिया। परस्पर विरोधी बातें लेकर जी रहे हैं और इसलिए न तो स्वयं से कनेक्ट हो पा रहे हैं न परमात्मा से हम कनेक्ट हो पा रहे, और जब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी एनर्जी कहां से आएगी। हमने कहा स्वयं से कनेक्ट हो रहे हैं, पहले हमने कहा ना कि अपने आप से बातें कर रहे हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल सेल्फ से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्ट होना है, और ओरिजिनल सेल्फ क्या है, मैं आत्मा हूं, खुशी तो मेरा स्वधर्म है, वो तो मेरी कोर प्रॉपर्टी है। सूर्य की कोर प्रॉपर्टी क्या है जरा बताओ तो, एनर्जी है ना सूर्य, और हर एनर्जी की कोर प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है, स्वधर्म होता है, स्वभाव होता है, क्या है बोलो बोलो। आंसर मैंने एक्सपेक्ट करूंगी किनसे, जो नए आए हैं, जो नए आए हैं वो जरा आंसर करें। प्रकाश, और सूर्य का कोर प्रॉपर्टी है प्रकाश और गर्मी। आंसर इज राइट, लेकिन ये बता दो कोर प्रॉपर्टी बोलने का अर्थ क्या है, स्वधर्म बोलने का अर्थ क्या है। चलो सूर्य बहुत दूर की बात, पानी का स्वधर्म बताओ, पानी का स्वधर्म क्या है, शीतलता। इसका मतलब क्या है, पानी को आंच के ऊपर रख देंगे गर्म हो जाएगा, लेकिन आंच से वापस हटा देंगे, इसको बोलते हैं स्वधर्म। कि जो चीज उसमें धारण की हुई है, जो जिसको अलग नहीं किया जा सकता है पर उसको ढका जा सकता है, जिसको ढका जा सकता है पर अलग नहीं किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश को, गर्मी को कोई छीन सकता है? हाँ बादल आ जाए हम कहेंगे नहीं सूर्य तो गर्मी दे ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दे रहा है, वो बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया। ठीक ऐसे जो हमने कहा ना कि हम कनेक्ट तो हो रहे हैं अपने से, लेकिन ओरिजिनल सेल्फ से नहीं, क्योंकि ओरिजिनल सेल्फ का कोर प्रॉपर्टी तो जो चाह रहे हैं वही है, खुशी चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, प्रेम चाह रहे हैं, आनंद चाह रहे हैं, विल पावर चाह रहे हैं, ये उस आत्मा एनर्जी की कोर प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके ऊपर बहुत दूसरी लेयर्स आ चुकी है, हम सिर्फ उससे ही कनेक्ट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है ना वो क्या करते हैं, बस एक गलती यही हुई, अगर इनका बर्थडे है और मुझे इनको बहुत अच्छी गिफ्ट देनी है वैल्यूएबल, मैंने डायमंड खरीदा बहुत प्योर, वो डायमंड ऐसे ही हाथ में देना होता है क्या, बेचने वाला भी ऐसे नहीं बेचेगा, किसमें बेचेगा, डिब्बी में भी मखमल की वो लगी रहेगी, फिर उस डिब्बी को अच्छा सा रैपिंग पेपर, फिर उसके ऊपर अच्छी सी रिबन, फिर उसके ऊपर अच्छे से वो नाम लिखने के लिए लेबल। तो जब इतना अच्छा अच्छा किसी को गिफ्ट करेंगे तो देख के ही पहले तो बाहर से ही खुश हो जाता है, हाँ बाप रे क्या बढ़िया लेबल है, फिर रिबन, फिर रैपिंग पेपर, क्योंकि खोलते ही जा रहा है तो उसको लगता है यही मेरी गिफ्ट है, अभी और अंदर क्या होगा। और उसी चक्कर में हम अंदर जो हीरा रियल में था वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि बाहर ही इतना सब कुछ अट्रैक्टिव मिल गया। हमारे साथ भी वही हुआ है, हमारे साथ भी वही हुआ है, कितनी सुंदर अच्छी दे रैपिंग पेपर है, डिब्बी है, देह अपने आप में डिब्बी है, और इसके ऊपर ये दिग्जाम मफतलाल के रैपिंग पेपर होते हैं नहीं, और फिर रिबन भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन होती है, डिग्रियां होती है, और लेबल तो है ही, और अंदर तो डायमंड है। और चूंकि उसकी समझ नहीं थी तो हमने उसको बिना सोचे समझे इस देह को ही सब कुछ समझते हुए, डिग्रियों को ही सब कुछ समझते हुए, पोजीशन को ही सब कुछ समझते हुए, जो कुछ किया, जो कुछ अक्वायर किया, वो उसके ऊपर धूल चढ़ती गई और हम कनेक्ट हो रहे हैं उस धूल से सिर्फ, और कहते हैं जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो यहाँ हम कनेक्ट होंगे स्वयं से, और जब स्वयं से कनेक्ट होंगे मतलब मैं आत्मा उस शांति को अनुभव करूंगी, मेरे अंदर है, और उस शांति वाली फ्रिक्वेंसी में आकर उस शांति के सागर की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होंगी। आज हम याद तो कर रहे हैं उसको, पर कनेक्ट नहीं हो रहे ना। ये तार टूट जाए, कट जाए, और मैं गांठ बांधकर जोड़ू तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग हटानी पड़ती है ना। तो हम भी भगवान को कैसे याद कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी मैचिंग नहीं कर रहे ना। तो अपने से कनेक्ट रियल सेंस में होंगे हम, और परमात्मा से कनेक्ट भी रियल सेंस में होंगे, तब जाकर वो एनर्जी का फ्लो होगा, और वो एनर्जी जब फ्लो होगी तो मैं खुशियों से भरपूर। तो हमारे अंदर हर प्रकार का ऐप है आत्मा में, मोबाइल में सब प्रकार के ऐप है ना, बात करने का, चैट करने का, फोन लगाने का, मूवी देखने का, ऑडियो सुनने का, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का, ऑनलाइन परचेसिंग करने का, और गेम खेलने का, सब ऐप है। एक एक क्लिक करते जाओ सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो। इधर आत्मा में भी हर प्रकार का ऐप है, शांति का भी, खुशी का भी, आनंद का भी, प्रेम का भी, पवित्रता का भी, ज्ञान का भी, पर बैटरी डिस्चार्ज है, कितने ही क्लिक मारते कुछ नहीं होता है। हाँ, तो परमात्मा से चार्जिंग करेंगे, एक एक क्लिक पे हमारे पास शांति होगी। हम सोचेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति का एहसास। हम सोचेंगे मेरी जीवन खुशियों भरी, मैं आत्मा खुशी से भरी हूँ, खुशी अनुभव होगी। तो ऐसा सुंदर राजयोग जिसका विस्तार हर दिन आप एक एक लेसन करते हुए समझेंगे, तो ये आप सबके हाथ में टाइम टेबल मिल गया है ना। तो इस टाइम टेबल के अनुसार हमें चलना होगा। जब आप 3-4-5 दिन के लिए अपनी सारी जिम्मेवारियां पोस्टपोन करके अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं, तो उस अमूल्य समय का सदुपयोग करना, कोई भी एक भी सेशन मिस नहीं करना। भले आपने यहाँ पे जो आप ज्ञान सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये तो मेरा सुना हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सुनेंगे ना, ऑडियो से सुनेंगे, वीडियो से देखेंगे, वहां से एनर्जी फ्लो नहीं होगा। या डायरेक्ट जिन्होंने लंबे काल से इस राजयोग का अभ्यास करते हुए वो ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्ट होकर ओरिजिनल वैल्यूज को रेडिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी का जब आदान प्रदान होगा ना, तो उसका अपने आप में बेनिफिट होगा। एक ट्यूनिंग फोर्क को, वो कहते हैं ना, एक कमरे में एक कोने में एक सितार रखियो और दूसरे कोने में दूसरी सितार रखियो, सिर्फ एक को आप वाइब्रेट करो वो ऑटोमेटिक वाइब्रेट हो जाएगी। बोलते नहीं बोलते, स्कूल में भी करते थे ना, ट्यूनिंग फोर्क लेते थे, उसको वाइब्रेट करो और दूसरे वाले को सिर्फ उसके सामने लाओ, वो भी क्या होता था, वाइब्रेट होता था। तो यहाँ पे वाइब्रेंट स्पीकर्स आएंगे आपके सामने, हाँ, तो वो आपको भी क्या कर देगी, वाइब्रेट कर देगी। इसलिए इसका पूरा लाभ लेना, ऐसे नहीं कि हम फिर सीडी में लेके जाएंगे उसमें सुन लेंगे, या टीवी में आता है उसमें देख लेंगे, ये नहीं करना। हाँ, तो ये टाइम टेबल के अनुसार, तो जैसे अभी का है आपका सेशन, वीडियो फिल्म आप देख चुके हैं, वेलकम सेशन चल रहा है आपका, जिसमें अभी हमारे बीच में हमारे शशि दीदी जी पधारेंगे, जिस कैंपस का सर्वे सर्वा है, मतलब पूरा वही देखते हैं। वैसे डायरेक्टर तो इस कैंपस की हमारे आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी हैं, जो शायद 12 तारीख को आकर आपसे मिलेंगे, लेकिन कहा कि नीचे का कैंपस बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती है, तो दादी का वहाँ उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। तो उनकी अनुपस्थिति में सारा कैंपस की जो जिम्मेवारी है हमारी शशि दीदी और शीलो दीदी दोनों मिलकर संभालते हैं। तो शीलो दीदी भी आज नीचे के प्रोग्राम में गए हैं, उनसे भी आप बाद में ही मिलेंगे, तो शशि दीदी जरूर हमारे बीच में आएंगी। और फिर यहाँ का प्रोग्राम जैसे ही पूरा होगा प्रसाद के साथ, फिर आप भोजन पे जाएंगे और रात में आपके साथ हमारे शांत कृष्णा भाई बैठेंगे और रूह रिहान करेंगे, रूहानी बातें शेयर करेंगे अपने जीवन की, जो आपको बहुत प्रेरणा देगी कि कैसे इस प्रैक्टिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल में उन्होंने उतार कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। फिर कल आपका सुबह से रात तक स्टूडेंट लाइफ, कितना समय हो गया होगा ना स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर, है ना, बहुत समय हो गया होगा हाँ, बहुत लंबा समय हो गया होगा सबका स्टूडेंट लाइफ छोड़कर, है ना। लेकिन अब फिर से एक बार स्टूडेंट लाइफ में आना, लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ जैसे एडिशन किया, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ नहीं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, कि जहाँ वो पढ़ाई हम पढ़ेंगे जो भगवान ने आकर हमें पढ़ाया है। तो भगवान जो पढ़ाएंगे वो जीवन की बातें होगी, जीवन के मैकेनिज्म को समझना है वो इजी होगा, वो मशीन की मैकेनिज्म समझने में थोड़ा सा हैवी होता है ना, पर यहाँ आप जो भी समझेंगे ना बातें जीवन से संबंधित, और वो भी आने वाले स्पीकर बहुत सिंपल भाषा में बोलेंगे, इसलिए वो बहुत इजी समझ में आएगा। इसलिए भले स्टूडेंट लाइफ को छोड़े लंबा समय हो गया है, फिर भी आप महसूस करेंगे हम सुबह से रात तक सुन रहे फिर भी लाइट, आप अनुभव करना कल बताना कैसे सुबह से रात तक सुन रहे पर फिर भी हम लाइट हैं, है ना। तो सुबह से लेकर कल आपके दिन में टोटल 5 सेशन है, लेकिन दिन की शुरुआत जो पीछे दी हुई है कि दिन की शुरुआत होगी आपकी सुबह 4 बजे से। हाँ आज तो आप आ गए, आज की सुबह तो निकल गई है ना, अब आगे के जितने भी दिन आप यहाँ पर है आपके दिन की शुरुआत कहाँ से होगी, सुबह के 4 बजे से। किस किस को आदत है सुबह 4 बजे उठने की, काफी सारे लोग हैं, जिनको नहीं आदत है वो हाथ खड़ा करें, हाँ इसमें क्या है, अच्छा वो भी लोग हैं। तो जिनको अभ्यास है उनके लिए तो सहज है उठना, लेकिन मैं बताऊं आपको अनुभव से, जिनको आदत नहीं है उनको भी उतना ही सहज है 4 बजे उठना इस कैंपस में, क्योंकि इस कैंपस के एयर में वो बात है, वो वाइब्रेशन है 4 बजे उठने का, तो वाइब्रेशन वो आपको मदद करेगा। बताया ना ट्यूनिंग फोर्क एक वाइब्रेट है, उसके पास में सिर्फ चला जाए दूसरा ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो जाता है, तो एयर में ही ये वाइब्रेशन है कि यहाँ सुबह उठना है। यहाँ रहने वाले भाई बहने तो 3:30 बजे उठना शुरू करते, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थी होते 3 बजे ही उठ जाते हैं, तो वो एयर में वाइब्रेशन है जल्दी उठने के। और दूसरी बात, यहाँ कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, जिम्मेदारी तो है नहीं, चलो वहां तो जिम्मेदारी होती है, ये सोचना है किचन का, मार्केट से ये लाना है, जॉब में ये करना है, कुछ भी ना, भाइयों को कोई जिम्मेदारी ना बहनों को कोई जिम्मेदारी, इसलिए एक तो वो भी सहयोग मिलेगा और आप भी फ्री है, दोनों सहयोग मिलेगा, और तीसरा आपका अपना दृढ़ संकल्प। जब मैं आया ही हूँ समय निकालकर, तो यहाँ की जो रूटीन है मुझे उसको फॉलो करना है, जहाँ इतने लोगों के लिए सहज है मैं भी एक संकल्प करके इसको लाकर तो देखूं, और आप देखना आपका दृढ़ संकल्प साकार हो जाएगा। आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कौन सा अभियान चलाया, अभियान तो नहीं है, संकल्प से सिद्धि, कितनी जगह पर प्रोग्राम हुए हैं संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम, संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम कितनी जगह पर अखबारों में छपते रहते हैं, है ना। और सिद्धि माना क्या, संकल्प तो समझ में आता है, सिद्धि माना क्या, रियलिटी, वो संकल्प रियलिटी में बदल जाए। तो हम एक संकल्प करें सिर्फ कि हमें यहाँ जो रूटीन मिला है, स्केड्यूल मिला है, उसके अनुसार चलना है, तो आपका संकल्प सिद्ध अवश्य होगा। तो 4 बजे उठ के तैयार होके आप यहीं पर आएंगे और 4:15 से 5:15 बजे तक आप यहाँ पर योग का अभ्यास साइलेंट में होगा। साइलेंस म्यूजिक बजती रहेगी मन ही मन। पहले दिन आप साइलेंस को एंजॉय करना और उसके बाद तो आप सेशन अटेंड करते जाएंगे, आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि उस साइलेंस में करना क्या होता है ना, क्लैरिटी होती जाएगी। तो वो आपको करना है। और फिर और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप आएंगे यहाँ पर तो मन में संकल्प उठेगा क्या नहा धो कर आना है क्या, है ना। तो वहां पे हम आपको बता दें, जरूरी नहीं है कि आप जब सुबह 4:15 यहाँ पहुंचो तो नहा धो कर आओ, जरूर नहीं है। पर एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे, अगर आप शौच में जाते हैं तो फिर जरूरी है, और अगर शौच करने नहीं जाते हैं तो ऐसे ही हाथ मुंह धोकर आ सकते हैं। तो ये शुचिता का भी एक नियम है यहाँ पर, जिसको आप अवश्य ध्यान पे रखना। तो 4:15 बजे आप पहुंचेंगे और 4:45 बजे तक आपका साइलेंट योग चलेगा, और उसके बाद आप जाएंगे डाइनिंग एरिया में, आपको टी चाहिए, कॉफी चाहिए, मिल्क जो भी है वहां पर अवेलेबल होगा, वो आप ले सकते हैं वापस। हाँ, और शायद जहाँ सुखदाम में तो वही मिलेगा। अच्छा, इधर ही है। अच्छा, अभी शाम को जहाँ ली होगी आपने वहीं पे ले लेना, और अगर किसी बिल्डिंग में है व्यवस्था तो फिर वहां ले लेना, और नहीं है तो यहाँ, चूंकि आप आएंगे ही यहीं पे तो यहाँ से तो इजी हो जाएगा ना आपको जाना, क्यों बिल्डिंग में जाए और वहां जाके पिए। तो यहाँ से पी के फिर आप जाएंगे, फिर भले आराम से समय देकर तैयार हो जाओ स्नान आदि करके, और वापस आपको यहाँ पर पहुंचना है 6:15। तो दो प्रकार की बातें हैं 6:15 के सेशन में, एक है साइलेंट मेडिटेटिव वॉक और एक है फिजिकल एक्सरसाइज। तो वॉक वाले तो बाहर जाएंगे और एक्सरसाइज वाले यहाँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना बारिश की आवाज आ रही है, तो उस समय भले ना वो साइलेंट वॉक जिनका मन हो कि हमको वहां जाना है, पर प्रकृति अगर कहे कि नहीं जाना है तो फिर सभी यहाँ पहुंच जाना, फिर सभी यहाँ पहुंच जाना। और साइलेंट वॉक अगर प्रकृति ठीक होगी, मतलब बारिश नहीं होगी, मौसम खुला होगा, तो आज रात को जो भाई आपके साथ बैठ के चिट चैट करेंगे, शांत कृष्णा भाई, वही आपको गाइड करेंगे। तो आपको रात को ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि कहाँ मिलना है आप लोगों को, ठीक है। और जिनको वॉक में नहीं जाना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके साथ वो एक्सरसाइज करने वाले हमारे एक्सरसाइज मास्टर होंगे, वो आपको बताते जाएंगे एक्सरसाइज। और कोशिश करें 6:45 पर पूरी कर दें। हाँ, कई बार क्या होता है, जो मास्टर करा रहा होता है ना, सामने वाले के उमंग को देखकर वो भी भूल जाता है टाइम को। तो आप थोड़ा उमंग को, अच्छी बात है उमंग में आना, लेकिन हर बात में पंक्चुअलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो 6:45 पूरी कर लेना। अगर नहीं, फिर भी नहीं हो पा रही, लेकिन 7 के पहले पूरी हो जानी चाहिए, इतना ध्यान अवश्य। ऐसा ना हो कि स्पीकर आकर पहुंच गया हो और आप अभी सेटिंग करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होने देना है। तो हम बता रहे थे 7 बजे के पहले सीट पर पहुंच जाना, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं, चाहे आप वॉक करने वाले हैं। वॉक करने वाले भी कहेंगे हम क्या करेंगे, हमारे गाइड ने हमको ऐसे किया, लेकिन आपका काम है। कई बार का ग्रुप का उमंग देखकर वो गाइड भी भूल जाता है ना। तो आपका काम है कि हमें सेशन में टाइम पर पहुंचना है। कई बार हम आगे इतना निकल जाते हैं, फिर बोलते इतना आगे निकल गए थे कि अभी वापसी में तो टाइम लगना ही था, इसलिए उस भाई को जरूर बता देना, हमको आप उतनी ही दूरी पर लेके चलो कि अब यहाँ से वापसी होते समय हम 7 बजे से पहले अपनी जगह पर बराबर बैठ जाए, क्योंकि वहां से जब थक कर आएंगे ना, सबको लगेगा थोड़ा सा फ्रेश होने जाना है, वो सब काउंट करना आप, ऐसा नहीं कि 7 बजे आऊंगा यहाँ फिर जाऊंगा वहां, सारा काउंट करके यहाँ पर 7 बजे के पहले पहुंच जाना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद तो आपका सेशन चलेगा, और उसके बाद आप नाश्ते पर जाएंगे, आपका डाइनिंग हॉल ऊपर वाला है, वहीं पर आपका चाय, हाँ आपका चाहे नाश्ता है, चाहे दोपहर का भोजन है, चाहे रात्रि का भोजन है, वो सब आपका ऊपर के डाइनिंग हॉल में है, बाकी शाम की चाय सुबह की चाय वो नीचे वाले एरिया में, ठीक है। और शाम की चाय के साथ तो आपको कुछ कुछ स्नैक्स भी मिल जाएगा, तो वो भी वही नीचे वाले डाइनिंग एरिया में ही होगा। तो पहला टॉपिक जो होगा, जो कहा राजयोग, राजयोग कौन करेगा, मैं करूंगा, मैं आत्मा करूंगी, तो पहले मुझे खुद को समझना होगा कि मैं आत्मा कौन हूँ, कैसे मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है। और वो जब समझ लेंगे आप, सेशन पूरा होगा, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन के बाद भी हो सके तो जो सुना है, जो अभ्यास किया है, क्योंकि अभ्यास भी कराया जाएगा, उसको उसमें खोए रहे, उसी का चिंतन करते रहे, बजाय इसके कि सेशन पूरा होते ही बातें करना हम शुरू कर दें। बातें करने के लिए और भी समय है, क्योंकि जो बात जब हम सुनते हैं ना, अगर थोड़ी देर उस पर चिंतन और हो जाए अपने आप से, तो वो मन के अंदर बैठ जाता है, वरना ऊपर ऊपर था, दूसरी बातें आई, कहीं उड़ गया, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बातचीत, जैसे ही सेशन पूरा होता है, बातचीत करने की जरूरत नहीं है, जो सुना है, जो अनुभूति की है, उसका ही अंदर चिंतन, उसका ही अभ्यास, और वो अभ्यास की जो बताए कि कैसे मैं शांत स्वरूप रहकर नाश्ता कर सकती हूँ, वो अपने आप की एक प्रैक्टिस शुरू कर देना, ठीक है। और एक दूसरे को भी देखेंगे तो जो अभ्यास सीखा है, जो सिखाया गया, उसी को एक दूसरे की एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखने का अभ्यास, मतलब प्रैक्टिकल करते जाना, सिर्फ सीख सीख कर कापियां नहीं भरना है या दिमाग नहीं भरना है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है। तो वो करके आप नाश्ते पर जाएंगे, और फिर ये जो कैंपस है पांडव भवन, आपको गाइड मिलेगा, जिस पूरा पांडव भवन कैंपस का आपको टूर कराएगा 9:30 से 10:30 बजे तक, तो 1 घंटा उसमें लग जाएगा आपका। और फिर वापस आप यहाँ 10:30, वहां पर भी पहले छूट जाना, 10:30 यहाँ पहुंचना है ना, तो 10:30 से 11 बजे तक आधा घंटा वापस आकर आप मेडिटेशन में बैठ जाना, कुछ गीत बजेंगे और कुछ आकर आपको मेडिटेशन की कमेंट्री भी कराएंगे, तो आप उस अभ्यास में अपने मन को चित्त को साइलेंट करके रखना, ताकि आपकी एब्जॉर्बिंग पावर बढ़े, जब नेक्स्ट स्पीकर आए तो जो भी सुनाए वो सीधा ग्रहण होता जाए, ठीक है ना। तो सेकंड होगा आत्मा ने फिर किसको कनेक्ट होना है, पहले खुद से कनेक्ट होके परमात्मा से कनेक्ट होना है, तो परमात्मा, जिस परमात्मा से कनेक्ट होना है उसकी पहचान, पहले ही बताए ना, हम परस्पर विरोधी बातें लेके चल रहे हैं, तो हम कल फिक्स करेंगे कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कौन सी परमात्मा की छवि है जिसको यहाँ बिठाना है, तो उसका उसकी जानकारी लेंगे। और उसके बाद आपका दोपहर का भोजन होगा, रेस्ट होगा, रेस्ट के बाद वापस टी कॉफी होगी, वो सब करके पुनः 5:30 बजे आप यहाँ पहुंचेंगे, जो टाइम लिखा है ना 5 मिनट पहले, अंडरस्टूड है ना, जो टाइम लिखा है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाना। तो फिर 5:30 से 6:30 हमारे एक सीनियर भाई आएंगे, जो आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आत्मा माना ही अंदर की बात है ना, तो अंदर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है उस पर फोकस डालेंगे, क्योंकि अंदर में जब हम परिवर्तन लाते हैं वही हमारे लिए सफलता की एक चाबी हमारे हाथ में होती है। वो कराने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन हमारा दूसरा स्पीकर आएगा, जो आत्मा और परमात्मा इन दोनों का प्रॉपर कनेक्शन इस पर फोकस डालेगा कि जिस कनेक्शन को सीखकर हम हर दिन हर पल कनेक्ट होते रहे और उसकी एनर्जी को खींचते रहे, अपने आप को भरते रहे और वापस अपने से सब तरफ रेडिएट करते रहे। और फिर वापस ये 8 बजे तक चलेगा आपका, और उसके बाद पुनः आप जाएंगे रात्रि भोजन करने और 9 बजे फिर से यहाँ पहुंचेंगे। ये टॉपिक हमने रखा है वैसे हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ स्टाइल, पर जिस डॉक्टर साहब के लिए रखा है इस समय वो नेपाल में है, लेकिन हमें पता चला कि कल सुबह तक पहुंच जाएंगे तो हमने ग्रांटेड ले लिया कि आएंगे और कराएंगे क्लास। हम होप करते हैं, और नहीं तो फिर कुछ और टॉपिक रख देंगे, ठीक है ना। और फिर गुड नाइट करके यहाँ पे 4 स्थान है हमारे जिनको हम कहते हैं 4 धाम। एक है बाबा की कुटिया यहाँ पर, एक है बाबा का कमरा। यहाँ से अगर चलते हैं ना तो पहले आएगी कुटिया, आगे बढ़ते हैं तो बाबा का कमरा, आगे बढ़ते हैं तो बाबा जहाँ मुरली सुनाते थे जिसको हिस्ट्री हॉल कहते, और आगे जाते हैं तो शांति स्तंभ जो बाबा का क्या है, जहाँ पर बाबा का स्मारक तैयार किया, क्योंकि वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनका स्मारक तैयार किया गया टावर ऑफ पीस के नाम से। तो ये 4 स्थान पर आप दिन में भी जब जब आपको स्थान मिले ना आप जाके बैठना, क्योंकि वो स्थान कैसे है कि जहाँ कंटिन्यूअसली मेडिटेशन हो रहा है तो पावरफुल है वो। आपको पता हो एक बार एक ग्रुप आया था जिनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे कि एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशन उनकी मशीन दर्ज करके बताती थी कि यहाँ के वाइब्रेशन कैसे हैं। तो वो अलग अलग स्थानों पर गए हुए थे और अलग अलग स्थानों की स्टडी करने के बाद जब यहाँ आए तो उनकी मशीन जो रीडिंग दे रही थी ना, कहीं ऐसे रीडिंग नहीं दी थी, वो बार बार कुछ 0 पे चले जाए, तो उनको लगा हमारी मशीन फेल हो गई है क्या। तो बार बार ट्राई करे और बार बार सब कुछ ट्राई करने के बाद देखने के बाद अल्टीमेट कंक्लूजन पहुंचे, मशीन खराब नहीं है, वायुमंडल इतने प्योर वाइब्रेशन से चार्ज है। तो पूरा ही वायुमंडल यहाँ का बहुत ही स्पिरिचुअली चार्ज है, लेकिन ये 4 स्थान जिसको हम 4 धाम कहते ये उससे भी ज्यादा चार्ज है। इसलिए वहां जाकर जरूर कुछ पलों के लिए बैठना, रात को भी किसी भी एक स्थान पे जाकर गुड नाइट करके फिर अपने रूम में विश्राम के लिए जाना और अगले दिन फिर उठकर पहुंचना है 4:15 यहाँ पे। तो अगले दिन तो फिर क्या किया है हमने, 11 तारीख को सुबह में जो उठना अमृत वेला, उसको अमृत वेला कहते हैं हम, जो 4:15 से 4:45 तक का सेशन है ना उसको अमृत वेला कहते हैं। तो वो अमृत वेला होगा, फिर 6:15 बजे यहाँ आएंगे एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद राजयोग का सेशन होगा और फिर नाश्ते पर जाएंगे। तो 11 तारीख को नाश्ते के बाद आप फ्री हैं टूर करने के लिए, गायत्री बहन आपको गाइड करेगी, ये 4 स्थान लिखे हुए वहां की साइट सीइंग के लिए आप निकलेंगे, आप खुले दिल से पूरा दिन आपके पास है टूर करना, 7:30 बजे तक इस कैंपस में वापस पहुंच जाना, थोड़ा सा योग कर लेना 8 बजे तक और 8 बजे भोजन खा लेना, और उस दिन चूंकि थके हारे आएंगे ना तो आपके लिए कोई स्पिरिचुअल स्टडी वाला लेसन नहीं रखा है हमने, कल्चरल इवनिंग रखी है जो ओम शांति भवन में होगा। ओम शांति भवन सामने ही है, वहां पर होगा आपका। फिर 12 तारीख को वापस सुबह से शाम तक फिर से आपके सेशन होंगे। तो 12 तारीख को भी 4 सेशन यहाँ लिखे गए हैं, लेकिन आप देखेंगे सुबह का सेशन है जो सेशन नंबर 7 है कॉल ऑफ टाइम, और उसके बाद जो सीधा सेशन 8 है जो 10:30 शुरू होगा जहां पर हमने क्वेश्चन एंड आंसर लिखा है, लेकिन हो सकता है उसी टाइम पर दादी जी पहुंचेंगे। अगर दादी जी, क्योंकि उस दिन हमको पता चलेगा कि दादी कितने बजे पहुंचेंगी, तो अगर दादी का टाइम मिलता है कि 11 बजे पहुंचती है तो आप आधे घंटे के लिए तो सेशन नहीं कर पाएंगे ना क्वेश्चन आंसर सेशन, तो ऐसे ही आपस में बैठेंगे और एक दो कोई आपको प्रश्न हो तो हम आंसर कर देंगे। और अगर दादी को आने में लेट है, समझो हमारा सेशन शुरू हो रहा है 10:30 और दादी आएगी 11:30, तो बाकायदा स्पीकर्स बैठेंगे पैनल 2-3 और आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। पर डिपेंड करता है कि दादी कितने बजे आएगी और इस सेशन के लिए हमें टाइम कितना मिलता है। तो दादी के आने के बाद तो फिर आपको गिफ्ट भी मिलेंगी, दादी से मिलना होगा, दादी भी अपने अनुभव से, उन्होंने अपनी कितनी आयु उनकी है अभी 93 और बाल्यकाल से इस यज्ञ में वो आए हैं, तो सोचो पूरा ही जीवन जिनका राज्यों के अभ्यास में चला है तो उनके वाइब्रेशन कितने पावरफुल होंगे। भले वो छोटी छोटी बातें बोलेंगे आपके साथ, लेकिन वो इतनी पावरफुल होगी जो जिसको आप अपनाएंगे और जीवन में प्रैक्टिकल होगा, वो जैसे कि वरदान का काम करेगा आपके लिए। तो दादी के अनुभव से लाभान्वित होने का वो समय होगा आपको। और फिर भगवान के घर में, पिता के घर में आए हैं, तो पिता तो बच्चों को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देता है ना कुछ छोटी सी यादगार दे देता है, भले ना बच्चे के पास बहुत कुछ हो। घर में भी जब बच्चा कमा के आता है ना, फिर वो मम्मी और डैडी 100-200 ऐसे जेब में डाले, अरे पापा सब है, कोई नहीं, ये मेरी तरफ से, क्योंकि इसमें बरकत होती है। क्यों? क्योंकि आप जो कमाना सीख रहे हो ना, कमा रहे हो, वो उस 100 से शुरू किया था आपने, वो पिता ने, माँ ने जो 100 दिया था ना, वहां से शुरू हुई थी। इतनी बड़ी आज जो कमाई भी आप कर रहे हैं, तो वो अपने पास जरूर होना चाहिए। भले हम कितना भी कमाएं, लेकिन वो 100 रुपए पर हमारा हक बनता है। तो ऐसे ही पिता के घर से आपको वो प्यार भरी गिफ्ट मिलेगी, आप उसको स्वीकार करना। और उसके बाद वापस आप, जैसे बताया, भोजन पर रेस्ट, टी कॉफी, वापस 5:30 बजे पहुंचना, और उस समय हमारी शीलो दीदी आपसे मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने भी ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर रहे इस संस्था के, साकार फाउंडर, इनकॉर्पोरियल फाउंडर तो शिव बाबा है, परमात्मा है, लेकिन थ्रू कराते हैं ना परमात्मा भी। तो कहते हैं परमात्मा को जब नई सृष्टि रचने का संकल्प आया तो थ्रू ब्रह्मा कराया है ना, तो वो ब्रह्मा बाबा को उन्होंने, शीलो दीदी ने साकार पालना ली है। ये मम्मा, ये बाबा दोनों की पालना ली उस समय से शीलो दीदी है। तो जैसे कि वो हिस्सी ऐसे सुनाते मानो आंखों देखा कोई सीन सुना रहा हो, तो पूरे जो प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये यज्ञ, ये संस्था की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आगे बढ़ रहा है, वो सारे जो भी प्रश्न होंगे उसमें आपके हल हो जाएंगे। और उसके बाद वो शीलो दीदी ही आपको मेडिटेशन कंडक्ट करेंगे कमेंट्री के साथ। और उसके बाद आपका कुछ अलग प्रोग्राम है, उसको सीक्रेट ही रहने देते हैं। क्यों 7:30 से 8 फिर से मेडिटेशन लिखा है, उसका कुछ सीक्रेट है, वो अभी नहीं ओपन करेंगे, ठीक है ना। और फिर वापस भोजन आदि के बाद 9:00 बजे फिर आएंगे, फिर ये जो सेशन है, फिर हमारे एक डॉक्टर भाई, और वो कंफर्म है कि वही कराएंगे। हाँ, तो उनका सेशन होगा और फिर आएगा आपका लास्ट डे। तो लास्ट डे होगा पर लिस्ट नहीं होगा, हाँ? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप बोलेंगे बहुत सुन लिया ना, आज तो पैकिंग करना है ना, ऐसे नहीं करना। लास्ट डे भी लिस्ट नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो उस दिन भी सुबह में अमृत वेला, फिर नहा धो के आने का एक्सरसाइज या वॉक, और फिर लगातार 2 सेशन रखे हैं, जिसमें 7 से 8 वो टॉपिक जो दिया है स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, क्योंकि जो कुछ सीखा है उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, वो लाइफ स्टाइल में कैसे डालना है, वो आपको दिया जाएगा। और फिर वापस हमारी शीलो दीदी आके एक बहुत पावरफुल फिर से आपको इंस्पिरेशन देगी, ताकि एक नई जीवन की आप शुरुआत कर सको। और इस तरीके से आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे और आप क्या बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे। अभी हम क्या है, तो कल ब्रिजमोहन भाई वहां एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि क्योंकि वो पॉलिटिशियन विंग थी माना राजनीतिक, और राजनीति में दल होते हैं ना, अलग अलग पार्टियां होती है, तो उनको बता रहे थे देखो आप सभी है ना अलग अलग पार्टी से आए होंगे, लेकिन आप सबको भी एक अलग नई पार्टी में शामिल होना है। आप चाहे किस भी पार्टी से आए हो, लेकिन हम सब मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे। आप सबको उस पार्टी में आना है। और कौन सी पार्टी पता है? देवी देवता पार्टी। देवी देवता पार्टी मानो, देखो नाम ही क्या है, देवता। देवता मानो देने वाले। तो ये जो दल होते हैं ना, वो लेने वाले होते हैं। तो हम लेने वाले में से देने वाले बनेंगे। लेकिन कब? जब हम अपने भीतर उतना स्टॉक रखेंगे। तो इतने चार पांच दिन में हम भर लेंगे ना, क्योंकि है तो हमारे पास ही ना, है हमारे पास ही, लेकिन वो अंदर दबा हुआ है। अंदर दब क्या है? आजकल देखो, हम घरों में जब मसाले यूज करते हैं ना, तो सेंधा नमक भी रखते हैं, और आजकल जो कॉमन सॉल्ट वो भी रखते हैं, लाल मिर्च भी रखते हैं, तो काली मिर्च भी रखते हैं। लेकिन सेंधा नमक, काली मिर्ची, वो तो उपवास के दिन खाना होता है। रोज तो क्या खाना होता है? रोज तो क्या खाना होता है? लाल मिर्च खानी होती है, चटपटा नमक खाना होता है ना। लेकिन आजकल डॉक्टर सब क्या कह रहे हैं? आपकी ये तकलीफ है ना, आपको लाल मिर्च छोड़ना पड़ेगा, आपको ये नमक बंद, नमक खाना ही है, सेंधा खाओ, मिर्ची खाना ही है, तो आप क्या करना पड़ेगा? घर में तो वो भी था, लेकिन बहुत दिन नहीं यूज करते, कभी यूज करेंगे तो भूल जाते, पड़ा है हमारे पास। कहते अजी जाते जाते जब आप आओगे ना लेके आना, नहीं पहले भी तो लाया था, अजी नहीं है, तो आ गया फिर से नया। लेकिन जब सफाई करने बैठे, शीशियां निकल के आ गई, वो तो पड़ा था घर में, लेकिन यूज नहीं कर रहे थे ना। ऐसे ही हमारे पास सारे ऐप है अंदर। शांति मेरे पास है, खुशी मेरे पास है, आनंद मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है, पवित्रता मेरे पास है। लेकिन लंबे समय से उसको यूज नहीं किया, उसके ऊपर दूसरे कुछ आ गए। क्या यूज किया? गुस्सा। गुस्से के बिना काम कैसे चलेगा? अरे ईर्ष्या नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कॉम्पिटिशन नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये वाले मसाले यूज करना शुरू कर दिए हमने, चटपटा लगता है ना? अब हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ वो भूल गया है, उसको याद करेंगे और याद करते ही हाथ वहां तक पहुंचाएंगे, है ना? सेंधा नमक पीछे पड़ा था ना, तो हाथ जाता नहीं था, लेकिन अब डॉक्टर ने कहा, फिर लाया भी और याद भी, अब हाथ थोड़ा इधर पीछे जाएगा हाथ, और पीछे करते करते सामने आ जाएगा। सामने वाली शीशी कहां चली जाएगी? पीछे चली जाएगी। तो सामने जो था वही तो प्रभाव डाल रहा था ना। तो जो सामने आ जाएगी, शांति का संस्कार, प्रेम का संस्कार, खुशी का संस्कार, रेडिएट वही होता रहेगा, तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर। तो ये है राजयोग का कैंप जो आप करने आए हैं, जिसकी थोड़ी सी भूमिका आप सबके सामने रखी, तो इसका पूरा पूरा आप लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। बाकी थोड़े से इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं कि जो बैज आपने पहन के रखा है, पूरा ही पांच दिन जब तक आप इस कैंप में हैं, पूरा ही पांच दिन तक आपको ये पहना रहे। ये एक पहचान है कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि यहाँ वैरायटी लोग आते रहते हैं, तो फिर मिक्स ना हो जाओ। और कहीं कोई अजनबी दिखेगा तो नेचुरली पूछेंगे ना, आप कौन है, कहाँ से आए हैं। सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना घर के अंदर, तो आपसे बार बार सवाल कोई न करे, बेटर है ये पहना रहे, तो वो दिख जाएगा ना, ये हमारे आमंत्रित गेस्ट है। लेकिन आप आमंत्रित गेस्ट महसूस करते हो? है अभी आप बच्चे हैं, भगवान के घर आए हैं ना, अभी अपनापन लग गया ना, घर के ही सदस्य हैं, तो इसलिए बार बार आपको अगर ये पहना है तो नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा, इतना लंबी यात्रा करके आप यहाँ पहुंचे हैं, आने से पहले भी आपको हमारी गायत्री बहन ने, आपके गाइड ने कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, है ना, कि स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल को टच नहीं करना है, हा? तो किसी को अगर आदत हो भी ना, तो ट्राई नहीं करना कि बाहर जाके लेके आओ। है किसी को आदत? हा? नहीं है ना किसी को आदत? ताली बजा दो, इतने अच्छे सदगुण वाले आप आए हैं तो। और भोजन जितना आपको चाहिए ना उतना ही थाली में लेना, क्योंकि प्रसाद है, भगवान को भोग लगाया गया है, भगवान के पवित्र वाइब्रेशन से भरा हुआ है और इसलिए वो प्रसाद है। और प्रसाद की हम कितने वैल्यू करते हैं, एक कणा भी नहीं गिरने देते हैं ना। तो भोजन उतना ही थाली में ले जितना खा सकते हैं, बाद में लगता है नहीं थोड़ा और चाहिए तो ले लो ना, हर्षा नहीं है, लेकिन आरंभ में ही बहुत। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हमने तो उन्होंने डालने वालों ने डाल दिया, लेकिन आप उनको पहले से अगर डाल भी दिया हो ना, आपके हाथ में चम्मच होगा, प्लीज इतना नहीं चाहिए, वापस कर दो, ठीक है ना। ये अवश्य ध्यान रखना, ये भी एक बोझ चढ़ता है। आज कितने लोग हैं जो भूखे हैं और वो हम ऐसा कचरे में डाल देंगे। छोटी छोटी बातों का अटेंशन ही हमारे जीवन को खुशियों से भरता है। तो लाइट पानी जैसे घर में आए हैं ना, तो घर में जिन बातों का ध्यान रखते हैं कि गीला वस्त्र बेड पर नहीं रखे, लकड़ी पर नहीं रखे, प्रॉपर जगह पर रखे, कमरे से निकलते हैं लाइट पंखा बंद करके निकले, बाथरूम में नल चालू न रह जाए, टप टप न, ये सब घर में हम बातें ध्यान में रखते और ये भी अपना ही घर समझ के वैसा ही ध्यान रखना। और हमारी नाइट ड्रेस अलग होती है, वो अलग रहे भले, पर कमरे से बाहर उससे नहीं निकलना। आपकी जो भी ड्रेस हो नाइट ड्रेस, उसमें आपको रहने का पूरी खुली छूट है, लेकिन जब कमरे से बाहर निकलो उस ड्रेस में नहीं निकलना, ठीक है ना। और क्या बातें ध्यान में रखने योग्य है, अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो जाता है और आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, तो बाबा की छोटी सी डिस्पेंसरी भी है, वहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी यहाँ मेंशन की हुई है, सुबह 8 से 11, फिर 4 से 6, फिर वापस 8 से 9, और इमरजेंसी है तो फिर 24 आवर्स अवेलेबल है, फोन करके बुला इमरजेंसी है तो। और ऐसे ही आजकल तो मोबाइल है, टेलीफोन एक्सचेंज जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी किसी को लगे तो आप जा सकते हैं वहां पर, वो भी फैसिलिटी है। और बाकी तो मैं समझती हूँ रेलवे की बातें तो आपको पहले से ही पता है, आइडेंटिटी जब वापस लौटेंगे आइडेंटिटी कार्ड आपका साथ में रहेगा, बोर्डिंग कहाँ से किए वो याद रखना, वो तो जाते समय की बातें हैं, यहाँ रहते समय तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और सेलिब्रेसी, आप सभी कमरे में कैसे हैं, भाई बहन मिक्स तो नहीं है ना, कोई भी अलग अलग है, कई कई है ना, इसीलिए मैं कह रही सेलिब्रेसी का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। यहाँ पर हम आए ही हैं प्योर वातावरण में, तो प्योरिटी हमारा पहला काम है, उस पर अटेंशन रखने का। बाकी जब वो तो मैंने पहले ही टाइम टेबल की पंक्चुअलिटी रखना, समय पर पहुंचना है, हो सके तो आप डायरी पेन साथ में रखें क्योंकि स्टूडेंट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कंटिन्यूस लिखते नहीं रहना, क्योंकि सारा ध्यान लिखने में होगा तो अनुभव में कहां जाएगा। हाँ, कोई कोई एक होता है ना, कोई एक पॉइंट उसका विस्तार किया जा रहा है, एक पॉइंट नोट कर लिया, बुलेट पॉइंट जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस लिखने में नहीं लगाना, वो समझना, अगर समझा हुआ रहेगा ना तो यहां छप जाएगा अपने आप, और बुलेट पॉइंट सिर्फ लिखे रहेंगे तो जैसे ही देखूंगा सारी रील घूम जाएगी, लेकिन पूरा ही लिखने बैठोगे ना और जब पढ़ोगे उतना नहीं समझ में आएगा, तो ये भी अटेंशन रखना, ठीक है। तो लगभग लगभग इस शिविर को पूरा करने अच्छे से लाभ लो, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन देने थे वो लगभग लगभग तो पूरे हो चुके हैं। अब मैं चाहूंगी कि गायत्री बहन भी कुछ गीत वाले भाई आ गए हैं ना, तो हमारे गीत गाने वाले भाई हमारे बीच पहुंचे हैं। आप सब इतने दूर से अपने सारी जिम्मेवारियों को पोस्टपोन करके यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारे गीत गाने वाले भाइयों को भी बहुत उमंग आता है कि हम दिल से इनका बहुत स्वागत करें, तो उनके दिल के उद्गार गीत में ढालकर हमारे बीच में आए हैं हमारे हल्दर भाई हैं, जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं समर्पित रूप से, और ये जो गीत है वो खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, बहुत बड़ी बात, ये कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, प्रोफेशनल कंपोजर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको सुनेंगे, इनके शब्द सुनेंगे तो आपको लगेगा प्रोफेशनल से कम नहीं है। तो ये ताकत है, जब राजयोग का अभ्यास करते हमारे जीवन की एक एक बात अपने आप कलात्मक बनती जाती है, भले हमने उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग न भी ली हो। उसका एक एग्जांपल हलधर भाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। हलधर भाई जी,
ओम शांति। जितने भी कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, ये बाबा का दिया हुआ है और ये चैतन्य देवियों ने जो हम के ऊपर उपकार किया है वो कभी नहीं भूल सकते। आज जो देख रहे हैं उन्हीं के पालना प्यार, दादियों के और बाबा के वरदानी जो कि अवर्णनीय है, इसलिए जोरदार तालियां तो इन दीदियों के लिए हो जाए। धन्यवाद।
स्वागत तो हलधर भाई का है।
दीदी ने कहा कि घर में आए घर के मालिक, है ना सभी? घर में आए घर के मालिक, स्वागत भले पधारे, बड़े प्यार से बुला रहे हैं, बाबा बाहें पसारे, भूली हुई बातों की याद दिलाने, दिल बाबा ने यहां बुलाया है, स्वागत में बारिश भी शीतल जल बरसाया है, शीतल जल बरसाया। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है।
आपको प्यारे प्रभु ने आपको यहाँ बुलाए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए हैं, रोम रोम हर्षाए हैं। रब के करीब जो आए हैं, स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए हैं। आबू अरावली पर्वत लकी सितारे आए हैं, आबू अरावली पर्वत पर लकी सितारे आए हैं। वहाँ खुलावा वहाँ रे बाबा भरा गगन गुनगुनाए हैं। जग का काया कल्प हो शुभ संकल्प लाए हैं, जग का काया कल्प हो शुभ संकल्प लाए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए हैं, रोम रोम हर्षाए हैं।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर भाई का। और अभी आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे ना? मैं हाथ खड़ा करवाना चाहूंगी जो फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आए हैं, बाकी पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, अभी फिर से शशि दीदी आएंगे तो हम आपका परिचय कराएंगे। अभी हम इनसे सुनेंगे कि फर्स्ट टाइम वालों ने तो हाथ उठाया, लेकिन फिर भी कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया जो बार बार आ रहे हैं। तो गायत्री बहन से हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा लक्ष्य रखकर हर साल हमारी गायत्री में इतनी मेहनत करके इन्हीं इसी मास में ग्रुप तैयार करके लेकर आती है, और इस बार तो अभी तक के रिकॉर्ड को तोड़ डाला, 200 से ऊपर भाई बहनों को लेकर आई है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जामा बाबा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, एक्यूरेट कल्याणकारी बनाया है। कैसे बॉम्बे जैसे शहर से आप सब लोग इतने अपने अपने कामकाज से समय निकालकर इतना वक्त लेकर के बाबा के घर सुरक्षित हम सब पहुंच गए, सेटल हो गए हैं। और बरसात ने, जैसे मैं तो हर दिन पूछती रहती थी, शीलू बहन बोलती थी बारिश है बारिश है, तो मैं खूब योग लगाती रहती थी कि बाबा सब जाए सब ठीक हो जाए। तो जब मैं 7 को आई तो यहाँ इतनी सुंदर धूप थी, तो 7, 8, 9 है ना, तो लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप आए तो धूप ले आए। तो अभी भी ऐसा ही हम पावरफुल प्रकृति को क्या देते रहेंगे, वाइब्रेशंस देते रहो, योग का दान दो, वाइब्रेशंस दो, ताकि प्रकृति हमें आप सबको क्या देती रहे, सहयोग देती रहे। तो हमारा योग उसका सहयोग है ना, हम प्रकृति को क्या देना, योग करना है ना, ताकि वो हमें क्या देगी, सहयोग देगी। तो जब बाबा के पास जाते हो, क्योंकि वैसे ही इस बार 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है माउंट आबू का, 130 इंच बारिश, जो आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा था, पता है ना आप सबने, हाँ कैसे सब राजस्थान गुजरात, तो इन लोगों का कहना था कि 100 साल का रिकॉर्ड यहाँ टूटा, 130 इंच बारिश कितनी हो सकती है आप सोचो, तो हिल स्टेशन और इतनी बारिश है ना, तो काफी दिक्कतें यहाँ, और ग्रुप्स तो बने हुए हैं, फिर भी भगवान का कार्य है, बाबा का कार्य है, तो देखो हर ग्रुप अपने आप में, चाहे वो ज्ञान सरोवर का हो, पांडव भवन का हो, शांतिवन का हो, बाबा कोई ना कोई रूप में उसको क्या दे देता है, हाँ? फायदा दे ही देता है। तो अभी ये लास्ट ग्रुप पांडव भवन का हम लोग कोलाबा वालों का है, उसके बाद यहाँ कुछ समय ठीक ठाक मेंटेनेंस चलता है, फिर अक्टूबर से वापस नई सीजन शुरू होती है, जो बाबा मिलन, विदेशी लोग आते हैं और ग्रुप्स आते हैं, तो इस तरह का यहाँ 365 दिन का सारा बना हुआ रहता है। तो पिछले करीबन 25 साल, लास्ट टाइम हमने 25वां साल मनाया था, याद है ना, इस ग्रुप का सिल्वर जुबली मनाया था, तो 26वां साल है, तो 26 साल से सितंबर मास में हम इस ग्रुप को लेके आ रहे हैं, 92 से हमने शुरू किया था इस ग्रुप को लाना, और जब पहला ग्रुप में लेकर आई थी तो 15 लोगों का लेकर आई थी, हाँ सीसीआई क्लब के लोग आए थे, उस समय हमारे एक मोहन मैतानी दादा थे, तो उनका एक सीसीआई ग्रुप था अच्छा सा, तो उनकी इच्छा थी, सिंधी लोग थे, तो फिर उस हिसाब से यहाँ हमें थोड़ी छुट्टी मिली थी, और उस समय तो न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था, दोनों ही नहीं थे, खाली क्या था, खाली पांडव भवन था, और अच्छा एक क्राउड सीसीआई का आना चाहता था, और उसमें सारी दादियां अवेलेबल थी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बड़ी दादियों से भरा हुआ रहता था, तो उस समय वो 15 लोग आए थे जो काफी अच्छे नामीग्रामी सिंधी थे, और वो पहला ग्रुप से काफी जो सेवा हुई उसी ने फिर ग्लोबल हॉस्पिटल को जन्म दिया है, कोलाबा सेंटर्स की तरफ से उसने लिए प्राउड है, उसमें हम खुबा वटुमल और काफी अच्छे लोगों को ले आए थे, और यहाँ उन्होंने देखा है जंगल है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे चलते हैं, तो उसमें से एक को थॉट आया कि यहाँ क्या होना चाहिए, एक अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए, तो वही सिंधी ग्रुप ने फिर बॉम्बे जाकर के डिसाइड किया कि हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे, तो आप देखो जी वटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल, वो उस समय 91-92 के आसपास 90 उस समय के पहले ही वो ग्रुप सोच ही रहा था, कोलाबा का ही ग्रुप था वो, और इस तरह से कितनी सुंदर कोलाबा सेंटर ने गिफ्ट यज्ञ को मिली है ग्लोबल हॉस्पिटल के, और जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बनी तो यहाँ के लोगों का जो एक भ्रांतियां थी समाज सेवा की, काफी फायदा हुआ ना, ग्लोबल हॉस्पिटल तो सभी के लिए बनी है तो सबको एक फायदा मिला, और धीरे धीरे फिर तो ज्ञान सरोवर और कई अनेक ऐसी सेवाएं होती रही, बाबा कराते रहे, तो आज मैं वो दिन याद करती हूँ कि कैसे धीरे धीरे फिर 15 से 25 30 50 100 फिर 150 हो गए थे, लास्ट ईयर 180 थे और इस बार कितना बड़ा ग्रुप हो गया। 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। तो आप सबको लाने का, हमारे बीच में हमारी प्रसिद्ध दीदी जी पहुंच गए हैं, हम सब दिल से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। इंदिरा बहन जी दीदी का परिचय देंगे, फिर दीदी हम सबसे मिलेंगे और प्रसाद भी देंगे।
ओम शांति। जैसे कि आप सुन रहे हैं, दीदी कह रही 2 लाइन में मेरा परिचय देना। तो दीदी का नाम बहुत ही सुंदर है और उसी नाम के अनुरूप उनकी क्वालिटीज भी है। दीदी का नाम है शशि प्रभा जी। तो आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी हम उनको कहते हैं शॉर्ट में, और हम सभी जानते हैं कि शशि किसको कहते हैं, चंद्रमा की किरणें कैसी होती है, शीतल। तो शीतलता की मूरत हमारी शशि दीदी जी, हम सबके बीच में पधारे हैं अपना अमूल्य समय निकालकर। तो हम एक बार फिर से जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। तो हमेशा ही वो शीतलता की किरणें रेडिएट करने वाली प्रभा का है ना, प्रभा माना ही क्या, आभा जो रेडिएट होता रहता है। तो बहुत शीतल तरीके से दीदी इस पूरे कैंपस को, दादी जैसे हमने कहा कि दादी रतन मोहिनी जी हमेशा नीचे होते हैं, तो उनके एब्सेंस में बहुत ही सुंदर ढंग से इस पूरे कैंपस को आप मैनेज कर रहे हैं। और आप वैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारी, जो सेवाएं की सेवाओं की अलग अलग विंग्स बनी हुई है, तो आप अभी वाइस चेयरपर्सन है उनके स्पोर्ट्स विंग के, और साथ साथ आप एक बहुत अच्छे राजयोग का टीचर भी हैं। और आपने भी मम्मा बाबा की, जो हमारे यज्ञ स्थापक रहे आदि पिता और आदि माता जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा बाबा, उनकी पालना लिए हुए हैं। और आप भी 40 से भी अधिक वर्षों से इसी कैंपस में रह रहे हैं, तो एक एक एक्टिविटीज उन 40 वर्षों में क्या नहीं हुई होगी, उन सब के अनुभवी भी हैं। तो अनुभवी मूर्त हमारे बीच में है, अपने अनुभव भी शेयर करेंगे और आप सबको प्रसाद भी देंगे। आदरणीय शशि दीदी जी,
ओम शांति। मधुबन विशेष तपस्या की भूमि, वरदानी भूमि, बाप दादा के श्रेष्ठ चरित्र भूमि, और हमारी आदरणीय दादियां वरिष्ठ भाई बहनों की विशेष श्रेष्ठ कर्म भूमि में कोलाबा और कोलाबा से संबंधित सेंटर से आए हुए भाई बहनों का मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जब जब कोलाबा की बात आती है तो मैं कहती हूँ कोलाबा निवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी ऐसे सेंटर पर जाते हैं जहाँ पर साकार बाबा भी जाते थे, दादी भी रही, सारे वरिष्ठ भाई बहने भी रहे, और वो धरनी ऐसी है जिसके द्वारा पूरे भारत और विदेश की सेवाएं आरंभ हुई। तो मैं ये सोच रही थी इतने भाग्यशाली हैं, और आपको टीचर भी ऐसी भाग्यशाली मिली है, गायत्री बहन और मोहिनी बहन तो बाप दादा की बहुत पालना ली हुई है, और ऐसे आपको रत्न मिले हैं, इन रत्नों से आपने तो ना जाने कितने खजाने प्राप्त किए होंगे। फिर भी मधुबन में आकर के राजयोग शिविर करना, मेडिटेशन करना, ज्ञान की क्लासेस की गहराई में जाना, ये भी यहाँ का अनुभव जो है वो बहुत न्यारा और प्यारा होता है। तो इस अनुभव को करने के लिए आप आए, और साथ साथ इंद्र देवता आपसे ना जाने क्यों खुश हो गए हैं। बॉम्बे में तो खूब स्वागत किया ही किया, और यहाँ भी आकर के आपका स्वागत अभी करने लगे, लेकिन स्वागत करते करते फिर वो थम भी गए और देखा कि ये बाबा के लाडले बच्चे हैं, इसलिए लाडले बच्चों का स्वागत करके और चले गए। लेकिन क्यों आए, इसका कारण क्या है कि पहले बरसात हो रही थी कुछ दिन से, अभी दो दिन से बरसात नहीं थी तो मौसम थोड़ा गर्म हो रहा था। बॉम्बे वाले तो कहेंगे एसी रूम चाहिए, ऐसा रूम चाहिए, यहाँ तो एसी रूम कभी देखा ही नहीं हमने, यहाँ एसी होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुराने जमाने स्टाइल के ही कमरे हैं। लेकिन इन कमरों में जो रस है, जो अनुभव है, जो प्राप्ति है, वो एसी रूम के अंदर नहीं है। इसलिए बाबा ने इंद्रदेव को कहा जाओ इनका स्वागत करो और ठंडे ठंडे मौसम में रहो और ठंडे ठंडे अनुभव करो। ये ना कोई कहे गर्मी लग रही है, रूम में पंखा ठीक नहीं है, क्या करें। तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मधुबन के लिए जब हम बात करते हैं, ये वो धरनी है जहाँ पर जब ये इंस्टीट्यूशन पार्टीशन के बाद, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद 1950 में यहाँ माउंट में शिफ्ट किया था, पहले एक और बिल्डिंग थी लेकिन वो सूटेबल नहीं थी। कुछ समय के बाद इस बिल्डिंग में आकर के रहे, लेकिन उस समय कच्चा स्थान, कमरे कच्चे, सीमेंट के बड़े होते थे, बरसात में दीवारों पे पानी आ रहा है। लेकिन जो भाई बहने यहाँ बाबा के साथ रहते थे उन्हें इतने अलौकिक अनुभव होते थे, और बाबा कहते थे एक समय आएगा पूरे भारत तो क्या विश्व में सेंटर खुलेंगे। बाबा के टाइम पर यहाँ उस समय 10-15 सेंटर थे, ज्यादा ज्यादा 20-25 सेंटर हो गए। तो भी विश्व की तो बात सोच ही नहीं सकते हैं कि विश्व में कैसे सेंटर खुलेंगे। इसमें कोलावा निमित्त बना, जो कि पहला वैसे तो पहले सेवा थोड़ी आरंभ हो चुकी थी, लेकिन कोलावा सेंटर निमित्त बना जो विदेश की सेवा को आरंभ करने में। तो विदेश की सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो आज हम देखते हैं पूरे भारत के कोने कोने में, मुंबई में देखो एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, इधर उधर सभी इतने बड़े सेंटर हैं। भारत में जाओ गांव गांव में सेंटर हैं। एक स्टेट में जाएंगे, चलना शुरू करेंगे, आधे घंटे में एक सेंटर, आधे घंटे में दूसरा सेंटर। तो इतने सेंटर खुल गए हैं, और विदेशों में भी इतने ज्यादा सेंटर खुल गए हैं, और भी खुलते ही जा रहे हैं। तो विदेशों के जो सेंटर हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है, कोई 5 एकड़, कोई 2 एकड़ में। और लंदन में जाएंगे तो जो रिट्रीट सेंटर है वो तो बहुत, कितने 60 एकड़ में है। अब न्यूयॉर्क में जाएंगे तो 500 एकड़ जमीन में है, जो बिल्ट एरिया है वो तो जहाँ थोड़ा है, लेकिन जो आगे का जंगल और इस प्रकार से है वो रिट्रीट सेंटर एक रिजोर्ट था। तो वहां पर बहुत सी सेवाएं हो रही हैं। अब सेवाओं के साथ साथ बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि दूसरे की सेवा से पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को इतना मोटिवेट करना है, उस मोटिवेशन से हमारी जो इनर पावर्स हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है संसार के अंदर या बाबा के बच्चों के अंदर या जिन्होंने ज्ञान का थोड़ा बहुत भी सुना है उनके अंदर इतनी वैल्यूज हैं, इतनी क्वालिटीज हैं, उसको कभी देखा नहीं, उस पर मनन किया नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर साइंस इतनी एडवांस जो आसमान तक, मून तक पहुंचा रहे और समुन्द्र के किनारे, और ऐसी साइंस निकल आ रही किस कोने में क्या हो रहा है वो एक सेकंड में रीड कर लेते। तो ये सब किसने किया है? मनुष्य ने किया। तो मनुष्य में भी कौन है? वो है आत्मा। तो आत्मा के अंदर जब इतनी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे यूज करें, वो बाबा ने यहां सिखाया। बाबा ने कहा आपको बाहर का कुछ सोचना नहीं, आप यहां बैठो, अपने आप को देखो, अपने बारे में देखो। और ये भी नहीं कहो हम तो भगवान को याद ही नहीं कर सकते, मन इधर भटकता है उधर भटकता है, क्या करते। बाबा ने कहा मन भटकता ही नहीं है, लेकिन टेंडेंसी हो गई है, मंदिर में गए, किसी स्थान पर गए, बस एक ही बात बोलते रहते हैं, हमारा मन भटकता है, मन चंचल है, बुद्धि इधर जाती है उधर जाती है। बाबा ने कहा चंचल है ही नहीं, आपने उसको चंचल बना दिया है। जैसे घरों में क्या करते हैं, बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, माँ बाप बच्चों को पाल रहे हैं, पालते हुए कहेंगे ये तो ऐसा है, पढ़ता नहीं है, ये ऐसा सुधरता नहीं, ये ऐसा ये नहीं कर सकेगा। तो वो जो हम उनको फीडबैक दे देते हैं, उस फीडबैक से बच्चों के अंदर वो कॉन्शियस बैठ जाते। तो यहाँ बाबा ने कहा चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बूढ़ा है, बीमार है, चल सकता है नहीं चल सकता है, बाबा ने कहा ये बहुत अच्छी आत्मा है। कभी कभी कोई बीमार होता था ना, बाबा कहते इसको तो भाग्य मिला, बीमार हुआ इसको और क्या करना है, बिस्तर में बैठना है, बैठे रहना है चेयर पे, बाबा को याद करे, खुशी में नाचे, खुशी ज्ञान का मनन करे, तो बाबा ये नहीं कहते बीमार क्यों हुआ, अरे हो गया तो बीमारी आई, दवा खाओ ठीक हो जाए, डॉक्टर का काम है आपको दवा देना, लेकिन मन को खुश रखना ये है बीमारी को दूर करने का साधन। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आज 99% डिसीजेज जो है माइंड अनरेस्ट के कारण। कभी कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वो कहेंगे इनको बीमारी कुछ नहीं, इनको थोड़ा खुशी दो, ये जो करना चाहता है करने दो, क्योंकि इसके माइंड के अंदर जो टेंशन आ गया है वो टेंशन को दूर करने के लिए बाबा ने कहा यहाँ ना कोई खर्चा है, ना कुछ आपको करना है, ना कपड़ा चेंज करना है, आराम से रहो, अपने घर में रहो, परिवार को चलाओ, बच्चों को पालो, समाज में रहो, समाज के कार्य करो, जॉब करो, कभी दुखी होके नहीं करो। जैसे ड्रामा के अंदर किसी को पार्ट मिलता है, रोने का पार्ट मिला है तो अच्छा नहीं ना, विलियन का पार्ट मिला अच्छा नहीं है, लेकिन वो ऐसा बजाते हो कि वंस मोर बोलेंगे ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर आपको कोई भी पार्ट मिला है, चाहे आप फैमिली के अंदर हैं, चाहे आप समाज के अंदर हैं, चाहे आप छोटा काम कर रहे हैं, चाहे आप बड़ा कर रहे हैं, छोटे काम से भी अपने आप को बड़ा बना सकते। आज जितने भी बड़े बने हैं वो छोटे काम से। लेकिन बाबा ने यहाँ पर ऐसा सिखाया था कि छोटा काम कोई नहीं है, बर्तन साफ करना ही घर का काम है, घर की सफाई रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है, घर के अंदर बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये छोटे काम नहीं है, ये ऐसे काम हैं जो घर के अंदर यूनिटी बनाए रखते हैं, घर के अंदर प्यार रहता है, घर एक आश्रम बन जाता है, स्वर्ग की फीलिंग आती है। नहीं तो आजकल क्या हो गया है, वो कहेगा तुम कर लो, तुम क्यों नहीं करते, मैं क्यों करूं। वो जो मेंटेलिटी बन गई है तो मेंटेलिटी आजकल बहनों के अंदर भी बढ़ती जा रही है, बच्चों के अंदर भी बढ़ती जा रही है, भाइयों के अंदर बढ़ती जा रही है, फिर सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कहते सर्वेंट आया नहीं, टेंशन हो गया, सुबह से काम नहीं हुआ, क्या करें, अरे कहाँ से कहाँ दिमाग लग गया, दो मिनट लगता है आप गिलास उठा के यहाँ से वहां रखने में, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ बाबा ने क्या किया था, बाबा ने कहा था सबको हर काम सीखना। शुरू में बाबा ने सब बहनें जो समर्पित हुई उनसे सब काम करा, चप्पल भी बनाओ, घर की क्लीनिंग भी करो, करो नहीं, बाबा खुद बैठते थे, जैसे बाबा बैठते सारी बहनें भाई दौड़ करके आते थे, जो कार्य दो घंटे में होना वो पांच मिनट में पूरा हो जाता था। तो घर के अंदर जो प्यार की फीलिंग्स हैं ये हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत कुछ अनुभव करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना, कभी नहीं कहना कि मैं कर नहीं सकता हूँ, बाबा कहते तुम सब कुछ कर सकते। हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिसको दुनिया के हिसाब से लोग कहते हैं ये मेंटली रिटायर्ड है, नहीं कर सकता, उसको बाबा ने इतना मेंटली डेवलप कर दिया, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी क्लेवर हो गए, इतना होशियार हो गया। मैं एक की कहानी सुना देती हूँ। हमारे पास शुरू में एक भाई था, उसका नाम था अर्जुन, ये सब जानते हैं। अच्छा, वो पुराना था लेकिन उसका माइंड इतना डेवलप नहीं था, तो बाबा ने सब कहते हैं सीखता कुछ नहीं है, तो बाबा ने उसको कहा ये मेरे गेट के पास ड्यूटी पर सिक्योरिटी मैन रहेगा। वो सिक्योरिटी की ड्रेस डाल करके, डंडा लेके, सिर पे टोपी डाल के खड़ा हो जाता था, इतना होशियार हो गया, बाबा कहेंगे ये काम करना है किसको बुला के आना है, वो कहीं से भी उसको ढूंढ के लाएगा, दूसरे को कहेंगे ना बाबा वो दिखाई नहीं दे रहे बाद में मिल जाते, वो कहीं से उसको ढूंढ के लाएगा। और फिर उसको जो अपना काम कराना होता था इतना क्लेवर हो गया कि किससे क्या काम कराना है उसको होशियार हो गया। फिर एक बार की हंसी की बात सुनाती हूँ, तो उसको बाबा ने कहा, सब बहनों को कहा, इसको कोई जो एक से दस तक गिनती सिखाएगा ना उसको चांदी का गिलास गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, तो उसको जो सिखाए, फिर एक दो तीन के बाद फिर चार छोड़ के पांच, फिर छह सात बोल के आठ छोड़ के नौ दस बोल दे, फिर दूसरी बार बोलेगा एक दो तीन चार पांच छोड़ देगा, तो उसको एक दिन दीदी ने कहा, इधर आओ, तुम सब कुछ ठीक बोलते, ये क्यों छोड़ देता है? कहता है, क्यों, वो चांदी का गिलास क्यों ले, मैं लो ना। तो बताओ, जिसको कहा बोला वो क्यों चांदी का गिलास ले, मैं तो बोल सकता हूँ, मेरे को लेना चाहिए, वो क्यों ले वे? तो बाबा ने देखो, जिसको कहा कुछ नहीं सीख सकता है, वो इतना क्लेवर हो गया, बोला चांदी का गिलास मैं गिफ्ट में लूंगा, तुम क्यों लो। तो कहने का भाव है, आज घरों में कई बच्चे थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, थोड़ा कम होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को देख करके उनको वैसा अगर डेवलप किया जाए, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने हर एक केंद्र, अब हमारी बहनें आई, शुरू में बाहर की दुनिया की एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन आज बाहर के साइंटिस्ट उनसे आके राय लेते, आज उनको कहते हैं दादी जानकी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वो माइंड की स्टेबिलिटी को उन्होंने बनाया। आज 102 साल की है, आज लंदन पहुंच गई, बीच में जर्मनी चली गई, बीच में क्लास करा रही, हम कहेंगे कौन कहां जाए, नहीं जा सकते, और उनको देखो वो तो उड़ती ही रहती है। तो ये सारा कैसा है? स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर के आगे बाकी पावर्स जो हैं, वो थोड़ा काम करेंगे थोड़ा नहीं करेंगे, और जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है तो बाकी पावर्स ऑटोमेटिकली उनके आगे झुकती हैं। तो स्पिरिचुअल पावर से अपने को यहाँ 3 दिन के अंदर भरपूर करना है, और वैसे तो आपको रहने का जो प्रबंध मिला है, मैं समझती अच्छा ही मिला है, फिर भी थोड़ी बहुत तो कठिनाई तो जरूर होगी ही, लेकिन मैं वही सोच रही थी, अमरनाथ जाते ना, बर्फ पड़ गई, सड़क पे पड़े हुए हैं, कहाँ सड़क पे खा रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, उसकी भेंट में तो 100 गुना अच्छा। दूसरी बात, बाबा कहते थे, जब बाबा की बच्ची यहाँ आते थे तो बाबा कहते थे इनको बहुत प्यार से खिलाओ, आप सबके खाने पीने रहने की भोजन की व्यवस्था आपके चॉइस अनुसार ही बनाई गई है, फिर भी किसी को कोई तकलीफ हो या कुछ हो तो वो बता भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आराम से रहना, आराम से खाना और आराम से मौज करना, और सदा खुश रहना, और खुशियों से अपने को भरपूर करते जाना। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि अभी आपका टाइम हो रहा है, फिर आपको भोजन के लिए भी जाना है। बरसात आई, छतरी है कि नहीं सबके पास? अच्छा, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब बरसात, सुनो मेरी बात, जब बरसात आए तो दौड़ना नहीं, क्योंकि जब बरसात आती है ना, पेड़ के पत्तों पर थोड़ा थोड़ा पानी आता है जो छत और उस पर गिरता है, तो जमीन पे गिरता है तो थोड़ा ग्लेज्ड हो जाता है, इसलिए दौड़ना नहीं, चाहे 2 बूंदे ज्यादा गिर जाए आपके ऊपर, लेकिन पाँव नहीं फिसलना है, पाँव नहीं फिसले, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाती है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, जिनके पास छतरी है शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, और सब ठीक है, आराम से सब पहुंचे आराम से? अच्छा, आइए इधर, अभी पहले भाइयों को बुलाएंगे टोली के लिए। अच्छा, ये आगे करो।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी जी का। हाँ, सब करतल ध्वनि से धन्यवाद करें, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इंदिरा बहन जी का भी। हाँ, उन्होंने भी पूरा मेहनत करके सारा शेड्यूल बनवाया। अभी बाबा के घर से आज हम आए हैं, तो प्रसाद टोली के रूप में स्वीकार करेंगे, फिर यहाँ से सीधे सभी डाइनिंग हॉल में भोजन पर जाएंगे, और उसके बाद अगर जरूरत है तो कमरों में जाए, कोई आप क्योंकि बोला बारिश की वजह से मूव करने में, शांति से सब धीरे धीरे चलेंगे, शांति से चलेंगे, आराम से चलेंगे, और कहा तो था सब कुछ हाथे लाने के लिए, फिर भी एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। और बात, हाँ बस अभी योग सहयोग बोला है ना आप सबको, क्या करना है? योग से सहयोग लेना है, किसे? प्रकृति से, इंद्र देवता से, ऐसा पावरफुल योग करो कि बस सब सहयोग मिले। हाँ, अच्छा, आप सबको खास पूछना है, कहाँ गए भाई अपने, जो 11 तारीख का साइट सीन का प्रोग्राम है, सुबह नाश्ते के बाद ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, दिलवाड़ा और पीस पार्क,
इस तरह का अब तक प्रोग्राम है। अगर प्रकृति ने जैसा 3 दिन साथ दिया वैसा ही साथ दिया तब तो पीस पार्क सभी लोग पहुंचेंगे और वहां जैसे स्पिरिचुअल पिकनिक करते हैं वैसे करेंगे, तो योग पावरफुल रहे तो वो सहयोग रहेगा। और फिर आने के बाद डिनर लेने के बाद फिर रात को ओम शांति भवन में स्पिरिचुअल कल्चरल इवनिंग रखा है। हमारी मोनिका पटेल आई है, आप सब जानते हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कोलाबा की गोल्डन जुबली में और सब में प्रोग्राम किया था 9 से 10 दिन, तो वो और पूरा ग्रुप छोटा सा एक कल्चर प्रोग्राम भी करेगा, तो वो भी आप 11 को देखेंगे। अभी हमें जानना चाहते हैं कि इसमें नए और पुराने दोनों है, तो पुरानों ने तो सब साइट सीइंग किया हुआ है, हो सकता है उनको साइट सीइंग में इंटरेस्ट ना हो और खाली पीस पार्क जाना हो, तो ये बताए कि कितने लोग पूरा साइट सीइंग करना चाहते हैं, वो हाथ उठाए और वो हमारे महिपाल भाई को और प्रमोद भाई को बता देंगे। अच्छे से हाथ उठाओ जो पूरा साइट सीइंग करेंगे, देख लो आप लोग। तो कल सवेरे फिर भी हम सेशन में वापस पूछ लेते हैं। और बाकी जो खाली पीस पार्क जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ।